Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today, we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
शुभ संध्या, नमस्कार श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। आज रविवार है और हम सब जानते हैं कि हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-1106। दिल्ली से जो भी बाहर के श्रोता हैं और जो मोबाइल फोन से कॉल करने वाले श्रोता हैं, वो इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। तो श्रोताओं, आज आपके सवाल के जवाब देने के लिए और म्यूचुअल फंड पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद,
वेलकम स्नेहा,
थैंक यू।
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेज As he lays the foundation stone for India's first advanced 3D semiconductor packaging unit in Bhubaneswar. Gold and silver prices register weekly gains and domestic investors to focus on geopolitical developments and corporate earnings for Q's next week.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की नींव रखी। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार इस सप्ताह भी बढ़त दर्ज की गई और निवेशकों का ध्यान अगले सप्ताह कंपनी आय और भू राजनीतिक गतिविधियों पर होगा।
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first headline story. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today said, Odisha is entering a new phase of industrial and technological growth, backed by strong policy support and rising investments. Mr. Vaishnav was speaking after laying the foundation stone for India's first advanced 3D glass substrate packaging facility at Infovalley in Bhubaneswar. The facility will manufacture cutting-edge glass substrate technologies, a first of its kind in the country. The minister said such advanced packaging will play a key role in the future of semiconductors, especially in areas like artificial intelligence and high-performance computing.
आगे और भी खबरों पर बात करेंगे, मगर उससे पहले आइए अपनी पहली कॉल हम उठा लें। ये है जयपुर से जितेंद्र।
हेलो, हाँ मैडम, जैसे इतने सारे जैसे फंड आते हैं, ठीक है, तो कोई फंड जैसे नहीं चलता तो उसका भी कोई लिस्ट आता है क्या, मतलब किसी वेबसाइट पे?
जितेंद्र जी, जैसे आप मान लीजिए कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा, ये उससे मिलने के बाद ही पता चलता है। तो कोई फंड अच्छा करेगा या नहीं करेगा वो वक्त बताता है। उसमें काफी सारा रोल इस तरीके का रहता है कि वो कब लॉन्च हुआ है, मार्केट उसके फेवर में थी या नहीं थी। तो आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपके गोल्स के लिए सूटेबल है या नहीं है, आपका जो टाइम होराइजन है, अगर टाइम होराइजन एक साल है, आप इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं, तो आपको बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि निराशाजनक व्यवहार दिखेगा जो वो फंड है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में है, जैसे जो हमारा गोल है वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं, हम उतना कर सकते हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं कि ये किसी वेबसाइट पे आता है या नहीं, तो ये जो उसके नंबर्स होते हैं वही बता देते हैं। जब आप किसी भी फंड को उसके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं तो काफी सारी वेबसाइट्स, फिनटेक वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां पे आपको उसके नंबर्स मिल जाते हैं, जहां से आप ये पता कर सकते हैं। बेहतर ये रहता है कि नए फंड को, क्योंकि वो नया है, थोड़ा समय दीजिए वो ट्रैक रिकॉर्ड बना पाए, फिर आप उसके नंबर्स को अकॉर्डिंगली जज करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाए।
इन द करंट जियोपॉलिटिकल टर्मोइल दैट वी आर फेसिंग today, what advice would you give to our listeners who would like to, you know, get into mutual funds? Should they stay? Should they get out of it? What should they do?
So, while I understand the kind of uncertainty that is there currently, however, one important point to note is the uncertainty has always been there, sometimes wearing the wrapper of a geopolitical instant or sometimes something else. The fact remains that you should not redeem or not think of redeeming until and unless you are nearer to your goal, because there is no predictability of the fact that the uncertainty is going to go just now, 10 months later, 2 days later, or anything. So as I was telling to Jitendra, the aspect that you can control here is that you stay invested, you diligently follow or do your SIPs. If you are somebody who is thinking of starting out your mutual fund journey, now is always the best time, because kal jab aayega tab ka kuch pata nahi hai. Something which is currently observable, currently you have that surplus, just go ahead, ensure you have an asset allocation, you have some fixed income in your portfolio, and yeah, that's that.
Okay, moving on, the US President Donald Trump today said that US representatives are traveling to Islamabad in Pakistan for negotiations with Iran, as he accused Tehran of violating a ceasefire agreement in the Strait of Hormuz. He said the delegations will arrive tomorrow. Iran has not yet confirmed the negotiation plans. In a social media post, President Trump claimed that Iran fired shots in the Strait of Hormuz yesterday, calling it a total violation of the ceasefire agreement with the United States. He also alleged that several of the incidents targeted a French vessel and a cargo ship with the from the United Kingdom, describing the act as unacceptable. The U.S. president said Washington is offering a fair and reasonable deal and expressed the hope that Iran would accept it. He warned that if the talks fail, the United States could target Iran's power plants and bridges, saying they could be taken down quickly and easily.
Rajesh, Bangalore se hamare saath Prasannan Kumar jud rahe hain. Kumar sahab, aapka bahut bahut abhivadan karyakram mein, kripya apna sawal poochhiye.
Dhanyawad madam. Madam, 2012 mein maine demat account open kiya tha. Hello.
Ji, aap apna sawal poochhiye.
Haan, wo open kiya tha. From then, I did not carry any activity. It was idle. Now I want to do trading. So should I continue with the same DMAT ID, or should I go for new one?
So if Prasannji, the DMAT account that you had opened with the particular broker remains somebody that you are currently okay with, the account would have turned dormant, and of course you can connect with your broker, or if you had done this via an app, that is also a possibility. You can ask regarding the procedure to make it active again, and then you can easily do the trading that you were referring to.
Varun from Delhi joins us now. A warm welcome, Varun.
अच्छा, नमस्कार. हमारा एक एक्सपर्ट से सवाल है कि जैसे गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं ग्लोबल मार्केट से, जो कैप लगा हुआ है 7 बिलियन का, तो हमें अगर गिफ्ट सिटी में, जैसे हमें स्टार्टिंग से बताएंगे कि उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, अकाउंट मतलब कैसे खोलेंगे, और रिडम्पशन और टैक्सेशन का इशू कैसे आएगा, और एक जैसे डीएसपी ग्लोबल इक्विटी गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है मतलब 20-22 कंट्री में. तो हमारा एक्सपर्ट से सवाल है कि एक दो फंड और एक मिनिमम अमाउंट कितना होता है वो हमें बताएं, और मतलब कि कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कि मतलब इससे कम हम नहीं कर सकते.
बिल्कुल वरुण जी, जो 7 बिलियन की आप बात कर रहे हैं, जो एक ओवरऑल एएमसी लेवल लिमिट है, मेरे हिसाब से आप उसी की बात कर रहे हैं, तो वो लिमिट म्यूचुअल फंड्स के लिए है. गिफ्ट सिटी उस बाउंडेशन में नहीं आता है जहां पर वो लिमिट का रोल आता है. तो वन इज दैट. सेकेंडली, गिफ्ट सिटी में जो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है वो 5,000 USD की होती है, समवेयर अराउंड 5 लाख इन INR. तो बिल्कुल हमें मतलब इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए. गिफ्ट सिटी एक ऐसा रूट हमें दे रहा है एट इन टाइम्स जहां पे म्यूचुअल फंड्स बहुत ही कम है जो ओपन है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल है. सो जनरली ये रहता है दैट जितनी मेरी नॉलेज है, एक तो बहुत ही कम ऐसे AMCs आ पाई हैं जो गिफ्ट सिटी पे अपने फंड्स ला पाई हैं, चाहे इनबाउंड हो चाहे आउटबाउंड हो. तो कुछ AMCs से अभी आप ऑनलाइन इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं. वो आपको एक, जैसे पहले के टाइम पे हम एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे म्यूचुअल फंड के लिए, वो वाले ऑफलाइन तरीके से आपको उनके यहाँ पे जो ऑफिसेज हैं उन्हें विजिट करना पड़ता है. वो आपको गाइड कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे किया जाता है. ये मेरी नॉलेज में है. हो सकता है कि कुछ आप ऑनलाइन देखें तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाए. बट मेरी एक ये सलाह रहेगी कि जैसे अब आपको पता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो आप थोड़ा सा ये जो गिफ्ट सिटी है, ये और फंड्स अगर आ जाएं तब आप सोचिएगा, क्योंकि 5 लाख रुपए काफी होते ही हैं. तो थोड़े और ऑप्शंस आ जाएं उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हैं. बट यू आर ऑन पॉइंट विद द फैक्ट कि आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन करें.
स्नेहा हमारे साथ बेंगलुरु से सुब्रतो जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में. आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
गुड इवनिंग टू मार्केट मॉनिटर.
गुड इवनिंग.
Yeah, just I want to know from the expert that I need the maximum return. So which mutual fund would be good? And if you suggest me any sectorial fund or thematic fund, I am bullish about renewable energy sector and auto sector and metal sector. So if my decision is correct, then suggest me some good renewable energy ETF or mutual fund. And my target is for around 25 to 30 years. So will it be good decision? I need the highest amount of return. This is my question. And my next question is, if I invest through the AMC website or through the broker app, so will there be any difference or will I be charged the same amount? Will the expense ratio? Or is there any hidden charge for if I invest through broker app?
Right. So, Mr. Subroto, on your first question, you want to earn maximum return. And as far as I could hear, since there was some disturbance in your voice, you are looking at a few sectoral or thematic funds to get nearer to your objective of maximization of returns. So one is, all said and done, in the world of mutual funds or any other market-linked instruments, equity is the asset class which can help you generate inflation-beating returns along with the compounding power that, of course, it brings in. So aiming to have equity in your portfolio is the best and in your controllable kind of an asset class. However, the aspect that you mentioned about maximization of returns, so therein comes the role of being market linked, right? So while, as I have been discussing, you can aim to have a certain asset allocation in your portfolio that can help you, like you can have fixed income that can help you protect your returns, and you can have equity at the same time that can help you keep on earning more returns. Getting exposure to sectoral or thematic funds is not a sure shot way of maximization of returns, because that is how the market works. What you can do is, if you believe in a particular sector, you can have a certain allocation, let's say 5 to 10% of your portfolio in that particular sector. For the other part of your portfolio, it would be better to have, let's say, 2-3 flexi cap or multi cap in your portfolios, along with dedicated small cap and mid cap, because having exposure across the growing market like large cap, the emerging markets like small caps, can holistically make your portfolio generate that kind of return, of course, with the 25 to 30 years horizon that you mentioned. So that is a strategy that comes to my mind when I think of generating good returns over a long period of time. On the second question you mentioned, if you go via AMC or a broker's website, if there are any hidden charges. One is if you're investing in direct funds of the particular mutual fund, then there shouldn't be. But of course, while you open the broker, the account with the broker, at that time, I would definitely, it would be nice to look at the, you know, their documents, their disclaimers that can help you more clearly understand if there are any hidden charges.
Mangesh joins us now from Maharashtra. A warm welcome, Mangesh. Please ask your question.
नमस्कार सर.
नमस्कार
सर, मेरा पूछना यह है, अमेरिका ईरान के बारे में आपने जो न्यूज बताई इंग्लिश में, वो सर हो सके तो हिंदी में बताइए.
आपका कोई सवाल है क्या? ओके, वी हैव लॉस्ट टच विद देम. विशाल फ्रॉम दिल्ली जॉइंस अस नाउ.
हेलो
जी.
गुड इवनिंग. जैसे मैं SIP कर रहा हूँ 10,000 रुपये महीने की स्मॉल कैप में, तो 15 साल तक करनी है मेरे को, 7 महीने हो गए करे हुए, तो इसे कंटिन्यू रखने में फायदा है?
बिल्कुल विशाल जी, अगर आपने जैसे मेंशन करा कि आप 10 साल तक करना चाह रहे हैं ये SIP, तो बिल्कुल स्मॉल कैप एक ऐसी कैटेगरी है जो लंबे समय में आप जितना लंबे समय तक कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो करके आपको बेहतरीन रिटर्न्स जेनरेट कर सकते हैं. ये हिस्टोरिकली भी हमने देखा है. एंड जैसे मैं अभी पहले श्रोता को बता रही थी कि अपने पोर्टफोलियो में जब स्मॉल कैप का एक टेस्ट आ जाता है तो वो जो रिस्क बढ़ता है, बट टाइम उस रिस्क को मैनेज कर देता है और आप रिटर्न बेहतर जेनरेट कर पाते हैं. इंश्योर ये करना चाहिए विशाल जी कि आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप का ना रहे एक्सपोजर, आप एक फ्लेक्सी कैप या एक मल्टी कैप उसके साथ रखिएगा.
बिल्कुल आगे बढ़ते हैं. सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में साप्ताहिक वृद्धि दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मई अनुबंध के लिए चांदी वायदा भाव में सप्ताह भर में 5.7% की वृद्धि हुई और 257,142 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ. वहीं जून अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में सप्ताह भर में 1.3% की वृद्धि हुई और ये 1,54,609 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा. वहीं बात करें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की, तो इसमें मई अनुबंध वाली चांदी 7% बढ़कर $81.84 प्रति ट्राई ऑन्स पर थी. वहीं जून अनुबंध वाला सोना लगभग 2% की बढ़त के साथ सप्ताह के दौरान $4,879.6 प्रति ट्राई ऑन्स पर रहा. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है हमारे पास खबरों में. जी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI की लगातार निकासी के बाद भारतीय शेयर बाजार में स्थिरता के आगामी संकेत नजर आने लगे हैं. पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो इसमें 4 में से 3 सत्रों में विदेशी निवेशकों ने खूब खरीदारी की. इससे बाजार में सुधार देखने को मिला और निवेशकों के उत्साह में भी सकारात्मक बदलाव नजर आया. अप्रैल माह में अब तक विदेशी निवेशकों ने 43,419 करोड़ रुपए के भारतीय शेयरों की बिकवाली की है. ये निकासी दर्शाती है कि अधिक स्थायी बदलाव के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता होगी. डिपोजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार से 6,883 करोड़ रुपए निकाले हैं. इससे समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारतीय पूंजी बाजार से कुल 58,506 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई है. और इसी दौरान भोपाल से हमारे पास एक कॉल आई है शंकर की. शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
नमस्ते मार्केट मंत्र टीम. मैडम, मेरे को 2-3 सवाल पूछने, छोटे छोटे हैं. पहला ये कि ये जब फॉरेन इन्वेस्टर्स डेट फंड से पैसा निकालते हैं तो हाउ इट अफेक्ट्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंडिया ऑन अवर डेट फंड्स. अगर वो पैसा निकालते हैं तो कैसे हमारे इस पर क्या इफेक्ट आता है हमारी रिटर्न पे? दूसरा सवाल मैडम, ये अब जनरली FPI ने बहुत सारा पैसा निकाला है और वो अगर आए तो अगर आने की उम्मीद तो है तो इट्स दे नॉर्मली इन्वेस्ट इन लार्ज कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स. दे डोंट इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, बट आई मीन FIIs. सो इजंट इट राइट नाउ टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन लार्ज एंड मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड रादर देन स्मॉल कैप फंड, बिकॉज स्मॉल कैप फंड में मोस्टली इंडियन इन्वेस्टर्स होते हैं. तो वॉट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस लार्ज एंड स्मॉल कैप फंड vis-a-vis FPI कमिंग बैक एंड इन्वेस्टिंग अगेन इन लार्ज कैप ऑफ इंडिया? थैंक यू. एंड फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट डेट फंड्स, हाउ विल इट इंपैक्ट इफ दे आर पुलिंग आउट? थैंक यू.
राइट, सो देन FPIs जनरली हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अक्रॉस इंडियन लेट्स से डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट. wherever they are pulling out from. Particularly regarding debt funds or debt market, they influence the bond prices, the yields, and of course overall liquidity in our system. So if let's say there are large inflows, when I'm talking about inflows from FPIs, these tend to increase bond prices, and which lowers the yields, which is a positive for existing debt funds prices, which is NAVs here. And the opposite happens when there are, let's say, sustained outflows. And but, you know, when referring to FPIs as a particular set, which is a very important set given the Indian economy, but, you know, sort of making investment decisions basis the outcomes of the inflows and outflows that they are making is not really that sustainable, because again, like we were discussing in the beginning of the show, the unpredictability bit is always hovers around us, right? And that is why we need to build a portfolio that can at least navigate across the kind of situations that the economy or the markets throw up. So what happens is the fact that you should have a fixed income allocation, let's say a 10-20%, howsoever comfortable you are with it, and the time horizon that you have. And particularly on FPIs, of course, you're right that they pull out from the large companies because they are mostly invested in those, and therefore the impact that you see massively is on these large cap heavy indices like Nifty 50, Sensex and everything. All said and done, your portfolio should have a bit of large, a bit of mid, and a bit of small cap. Mid and small cap kind of exposure can be governed by the kind of time horizon that you have. So that is one thing that can, that should be kept in mind. If you are aiming to not have small cap in lieu of, not have large cap in lieu of, you know, what is going on, that would also not be right. And that is why, that is where a multi-cap, a diversified kind of fund, let's say multi-cap, flexi-cap, large and mid-caps, value-oriented funds, all of these offer you a diversified portfolio. And that can be the core of your portfolio.
Joining us from Delhi is R.S. Dhaiya. A warm welcome, Mr. Dhaiya.
Yes, namaskar.
Ji.
Sir, my question to the expert is, I'm giving an example of JM Financial FlexiCap and Invesco Infrastructure Fund. Now, the performance of both these schemes is far below the benchmark. Who is going to question and punish the fund manager, and why you have not been able to match your performance with the benchmark?
Right. So, Mr. Dhaiya, you are correct in saying that when an investor invests in an actively managed fund, the fund manager has to aim to beat the benchmark, because that then that justifies the kind of active management fees that they are charging in terms of expense ratio. Having said that, the particular funds that you mentioned, while I was able to correctly note down JM FlexiCap, I missed the Invesco fund that you mentioned. The important point here is to note the fact that since these are market-linked products, of course, sometimes the market may not be favoring a particular a fund manager strategy, and sometimes it would. An important point would be to see if you look at the rolling returns, you know, that tells you the report card of the fund on every particular day, how it has been. If this is the time, this is the, let's say, this is not the usual for a fund to not beat the benchmark, then you can, of course, you should, of course, stick to the fund, continue or SIPs. Having said that, if it is usual that the fund does not ever beat the fund, then maybe it's time to pause your SIPs there.
Aage badhte hain, Rajesh.
Moving on, after rising for the second consecutive week, domestic markets are likely to focus on corporate earnings, geopolitical developments, commodity trends, and foreign investors' activity for Qs in the week ahead. On the macroeconomic front, investors are expected to assess core industries' output data for March, scheduled for release tomorrow. They will also closely monitor ongoing fourth quarter financial year 2026 earnings. Elsewhere in Asia, the People's Bank of China will announce its loan prime rates, and Japan's trade and inflation data will be released next week. In the United States, the outlook will continue to depend on developments regarding the conflict with Iran and its impact on global energy prices. Corporate earnings results will also remain in the spotlight. So this is what we are expecting in the coming week. In such a scenario again, what should the mutual funds investors look forward to and at the same time restraint from?
Right. So one must always be aware of the environment or the situation going on. Jeez. And thus it is always important to be on loop with what is going on and understanding the facts. However, what should they should be looking forward to is, as I mentioned, continuing the discipline that SIP has been doing for them. So continuing with their investments. Of course, looking at the asset allocation, if let's say they are uncomfortable with the situation, then asset allocation becomes the solution to your discomfort. Hmm. And that is where you should look at how the debt allocation or the equity allocation is making you feel at the moment.
स्नेहा, एक बड़ा ही मौलिक सवाल है जो बहुत सारे श्रोताओं और निवेशकों के मन में होगा या उन लोगों के भी मन में होगा जो इतनी अनिश्चितताएं देखने के बाद भी चाह रहे हैं कि मार्केट में हम जो हैं अपने पैसे को सर्कुलेट करें, अपना पैसा लगाएं. तो एक शुरुआती निवेशक के लिए आपकी क्या राय है कि इतनी अनिश्चितताओं के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 500 रुपए हैं मात्र हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए, तो मैं किस तरह से उसको डाइवर्सिफाई करूं कि वो मेरे लिए सबसे सार्थक सिद्ध होगा?
बिल्कुल. सो सबसे सार्थक तरीका जो एक हो जाता है एक शुरुआती निवेशक के लिए, अगर उन्होंने सोच लिया है मन में कि वो ये 500 अपने एक्सपेंसेस से अलग करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बस इस सोच के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए. सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर एक हाइब्रिड फंड का हो जाता है, बिकॉज जो भी चीजें अभी हमने डिस्कस करी कि हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, हमें एसेट एलोकेशन चाहिए, तो एक इनबिल्ट एसेट एलोकेशन आपको हाइब्रिड फंड्स ऑफर करते हैं. अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के बारे में अगर मैं 2 मिनट बोलूं तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जो कुछ 65% इक्विटी में आपका पैसा लगाती है और बाकी का बचा हुआ डेट में लगाती है. तो जब मार्केट बढ़ रही होती है ये उतना नहीं बढ़ेगा जितना मार्केट बढ़ रही है, बट जब मार्केट गिर रही होती है ये उतना नहीं गिरेगा जितना मार्केट गिर रही होती है. एंड दैट बिकम्स द स्वीट स्पॉट. जब कोई शुरुआती निवेशक होता है वो जो एक हिम्मत होती है स्टार्ट करने की, उसके बाद जब आप एकदम देख लेते हैं कि चीजें हरी नाओं के लाल दिख रही
हैं,
तो वहां पे एक हाइब्रिड फंड का रोल और अहमियत समझ आती
है. यानी कि हाइब्रिड फंड जो है राजेश, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा था उसमें हताशा बहुत ज्यादा थी और एकदम से सबके मन में था कि कब हमारे जो फंड्स हैं वो ग्रीन में जाएंगे या हमारे स्टॉक्स हैं वो ग्रीन में जाएंगे. तो मतलब आपका ये जो संदेश है ये उन्हीं के लिए कि डिसिप्लिन के साथ फिर इन्वेस्ट करें.
बिल्कुल.
सो आई वॉज रीडिंग समवेयर एक्चुअली जेसी लिवरमोर, अ ट्रेडर ऑन द वॉल स्ट्रीट, सेड देयर आर ओनली 2 इमोशंस इन द मार्केट, होप एंड फियर. The time that we should be hoping, we fear. The times when we should be fearing, we hope. So, in the current scenario, where should hope be and where should fear be?
That's a very interesting
सवाल है ये, स्नेहा.
बिल्कुल. So, you know, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है. The hope and fear actually depends upon the kind of person we are referring to. Because, राजेश जी, ऐसी बहुत possibility है कि मैं उम्मीद करके बैठी हूँ. I am hoping for things to turn around for the good of, let's say, my portfolio. But जैसे अभी उन्होंने बोला कि कोई शुरुआती निवेशक है, उनके लिए जो होगा होप सही अभी वो वाला इमोशन होगा ही नहीं गिवन की चीजें कैसी दिख रही हैं. उनका हो जाएगा फियर. So it all comes down to the human psychology, and that
hopefully
is why
next time we'll continue this discussion.
Sure.
स्नेहा, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
जी धन्यवाद.
And before we close the headlines once again, Union Minister Ashwini Vaishnaw lays foundation stone for India's first advanced 3D semiconductor packaging unit in Bhubaneswar. Gold and silver prices register weekly gains, and domestic investors to focus on geopolitical developments and corporate earnings for Q's next week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें. Good night.